भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरा। तो सभी भक्तों का स्वागत है और मैं अपने आप को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से कितने 2.5 महीने बाद गीतामृत हो रहा है, 3 महीने हो गया। तो इस बार का टूर काफी लंबा रहा और काफी इफेक्टिव भी रहा। भगवद गीता के संदर्भ में मैं जब ग्रीस में था तो वहां पर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उनके कॉरपोरेट सेमिनार्स में मैं गीता सुनाऊं। तो मैंने जब गीता का इंट्रोडक्शन दिया और जब मेरा भी इंट्रोडक्शन दिया गया उस सेमिनार से पहले, तो वहाँ के एक व्यक्ति, वो कंपनी के वो मेन ओनर थे, सीईओ एक कंपनी के, फार्मास्यूटिकल कंपनी के, तो उनका एक बहुत ही विचित्र प्रश्न था, लेकिन मुझे वो विचित्र प्रश्न अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि गीता जो आपने हमें बताई है तो वो एक रणभूमि पर सुनाई गई, इट वॉज स्पोकन ऑन अ बैटल फील्ड टू अ वॉरियर, एंड यू आर अ वॉरियर एंड यू लेफ्ट बैटल फील्ड आफ्टर हियरिंग गीता। तो अच्छा प्रश्न था, पहली दफा इस प्रकार का प्रश्न किसी ने पूछा था। तो उत्तर में मैंने कहा कि भगवद गीता द्वापर युग में सुनाई गई और विशेष रूप से अर्जुन को, जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो प्रतिद्वंद्वी अर्जुन के उनके ही सगे संबंधी थे और अर्जुन उनको नहीं मारना चाहते। परंतु कलयुग में हमारे सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना है, जरूरी है। किसके साथ करना है? सगे संबंधियों के साथ युद्ध करना है, लेकिन जानना है कि वो सगे संबंधी कौन है। वो हमारे ही हृदय में बैठे हैं और वो हमारे ही अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार। इसलिए तो मैंने उत्तर में यह कहा कि मैं जब भारतीय वायुसेना में था तब मुझे भगवद गीता जब प्राप्त हुई या भगवद गीता का ज्ञान जब प्राप्त हुआ, तब मुझे समझ में आया कि मेरे असली शत्रु वो LOC के उस पार नहीं है, मेरे असली शत्रु मेरे अंदर ही बैठे हैं। और इसलिए कलयुग की एक विशेषता ये बताई गई है कि कलयुग में हमारे जो सबसे शक्तिशाली शत्रु हैं, बाहरी रूप से जो भी शत्रु के रूप में आए, वो केवल हमारा शरीर खत्म कर सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा, परंतु हमारी आध्यात्मिक प्रगति को कौन रोक सकता है? वो है हमारे अंदर के शत्रु। तो जब उन्होंने ये सब कुछ सुना तो वो इतना प्रभावित हुए भगवद गीता से कि उनको भगवद गीता अब पढ़ना शुरू करनी थी। तो मैंने एक एप्लीकेशन है गीता बेस कर, तो मैंने उनको वो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। और फिर वो जिसने दिन वो सेमिनार्स अटेंड वहाँ पर करते थे, तो रोज दिन में उसमें से वो गीता कुछ पढ़कर आते थे, और इतना ज्यादा वो गीता से प्रभावित हो गए कि वो रहने वाले ऑस्ट्रिया के, तो ऑस्ट्रिया गए जब वापस, और मैं भी फिर बाद में गया तो मेरे को उन्होंने दिखाया भी, तो उन्होंने उनके कंपनी में, उनके फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सब एम्प्लॉयज के लिए थॉट फॉर द डे कर कर रोज होता है, तो उन्होंने वो गीता बेस से उस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में रोज भगवत गीता का एक श्लोक, और ये लोग सब पूरे अंग्रेज, कोई ये सब यूरोपियंस है, ऑस्ट्रियंस, कोई भारतीय नहीं है वो पूरे कंपनी में, सब फिरंग, तो रोज उनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर भगवत गीता का एक श्लोक, और क्योंकि उनको वो संस्कृत की जो लिपि है हमारी देवनागरी वो इतनी पसंद आई, तो उनके एक एम्प्लॉई वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये जो संस्कृत भाषा है ये देखने में कितनी सुंदर लगती है, समझ में तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जो इसकी लिखाई है ये लिखाई इतनी मुझे सुंदर लग रही है। तो उसने मुझे पूछा कि आप ये जो पढ़ सकते हो इसको? मैंने कहा हाँ पढ़ सकता हूं। तो ये कितने ऐसे लिखे हुए हैं वर्सेस? तो मैंने कहा 700 हैं। 700? तो उसने मुझे पूछा कि इसमें से आप एक फेवरेट वर्स मुझे चूज कर दीजिए लिखकर। मैंने कहा क्यों? वो मुझे टैटू करना है अपने अपने हाथ के ऊपर उसका टैटू बनाना, क्योंकि मेरे को इसकी लिखाई बहुत अच्छी लगी। तो मैंने फिर अपना 1866 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रजा वो उसको लिख कर दिया, और वो फिर 3 दिन बाद वो अपने यहां पर टैटू कर फिर वो बनियान पहन कर आया दिखाने के लिए कि मैंने उसको टैटू किया है। तो ऑस्ट्रिया में गीता अलग अलग प्रकार से, किसी के हाथ पर टैटू सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी के फार्मास्यूटिकल कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में डिस्प्ले हो रही है। तो हमें कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए कि बचपन से हमको हमारे रगों में भगवद गीता के जो श्लोक हैं खून से भी ज्यादा बहते हुए ये अवसर हमको हमारी भारतीय संस्कृति ने दी है। तो मैं वहां पर जब था तो हर बुधवार को बुधवार कार्यक्रम के विषय में सोचता रहता था, और जितने भी वहां पर मैंने हफ्ते में सेमिनार्स दिए तो मैं, मेरा प्रयास यही रहा कि वहां पर भी बुधवार को मैं गीता पर ही प्रवचन दूं। तो आपका पता नहीं मेरा तो गीतामृत कार्यक्रम चल रहा था तो मेरे लिए 2.5 महीने का गैप नहीं है, खाली ऑडियंस बदल गया और कॉम्प्लेक्शन बदल गए हैं तो आज कुछ कारणों की वजह से ये फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, ये एडाप्टर ऑन नहीं, तो हम ट्राई करेंगे छोटे स्क्रीन पर ही। याद है हमारे पिछले गीतामृत में हमने कौन सा प्रसिद्ध श्लोक लिया था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम। शायद भगवान की ऐसी योजना है, अब हाल ही में जन्माष्टमी आ रही है, तो ये जो श्लोक हैं गीता के इस अध्याय के जन्माष्टमी से बहुत निकट से इनका संबंध है। तो हमारा 4.8 का जो श्लोक है ये भी एक ऐसा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान ने अर्जुन को, अब पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को धर्म संस्थापना की जो जरूरत है, कितने सेशन्स हमने लिए थे? 7 7 हाँ, तो वो एक श्लोक के हमने 7 सेशन, 7 बुधवार हमने लिए थे वो एक श्लोक को समझने के लिए। तो सोचिए भगवान ने उस एक श्लोक में कितना गुह्य ज्ञान दिया। और ये श्लोक भी कुछ कम नहीं है, इसलिए आप पढ़ रहे होंगे। पार्ट 1 से हम शुरू कर रहे हैं, ज्यादा इसके नहीं होंगे पार्ट, लेकिन फिर भी एक आध पार्ट तो होंगे। तो पहले हम ये श्लोक का उच्चारण कर लें, उसके पश्चात फिर थोड़ी भूमिका इसकी बताते हुए हम इस श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यहां पर इस श्लोक में हमें सबसे पहले जो भगवान मुख्य मुद्दा कहना चाहते हैं उसे ढूंढना है। कभी भी हम भगवद गीता या हमारे अन्य ग्रंथों के किसी भी श्लोक को समझने की कोशिश करें तो ये एक नुस्खा आपको बता रहे हैं। नुस्खा ये है कि उस श्लोक का जो मुख्य मुद्दा है पहले उसे ढूंढें। तो इस श्लोक का मुख्य मुद्दा भगवान कह रहे हैं धर्म की संस्थापना। क्योंकि ये मुख्य मुद्दा क्यों है, एनी गेसेस? क्योंकि पिछले श्लोक में भी भगवान ने धर्म संस्थापना के विषय में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। तो क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने धर्म संस्थापना के विषय में कहा है, इसलिए इस श्लोक में भी मुख्य मुद्दा भगवान उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसलिए जो मुख्य मुद्दा है वो तीसरी लाइन में है, धर्म संस्थापनार्थाय। तो भगवान कह रहे हैं युगे युगे, हर युग में मैं बार बार आकर धर्म की संस्थापना करता हूं। तो मानो अर्जुन पूछे कैसे करते हैं आप, तो भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृताम, कि जो साधु हैं जो मेरे भक्त हैं उनका परित्राण, उनकी सुरक्षा कर और दुष्कृताम विनश्यति, जो दुष्कृति हैं जो राक्षस हैं उनका विनाश कर। तो आपको संक्षिप्त रूप में समझ में आ गया होगा कि मुख्य मुद्दा क्या है और गौण मुद्दा क्या है आज के इस श्लोक का। तो भगवान इसका पूरा अनुवाद इस प्रकार से है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। अब यहां पर देखिए, विनाश करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की, भगवान ने कहा है फिर से स्थापना करने। तो जो फिर से है उस पर गौर करना कि भगवान युगे युगे जब कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल द्वापर युग में आकर धर्म की संस्थापना किए। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं हर युग में अवतरित होता हूं, तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आपने तो द्वापर में गीता सुनाई, तो हर युग में आप अवतरित होते हैं, तो बाकी युग में करते क्या है? वेकेशन पे आते हैं क्या? नहीं, हर युग में धर्म संस्थापना। तो यदि हर युग में धर्म की संस्थापना भगवान को करनी पड़ती है, अर्थात क्या समझ में आ रहा है कि हर युग में धर्म की ग्लानि होती है। तो इस प्रकार से हमें ये अनुवाद समझना है। अब चर्चा के विषय हमारे इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से संबंध, परित्राण शब्द की व्याख्या हमारे आचार्यों ने किस प्रकार से की है, साधु शब्द की व्याख्या क्या है, भगवान के द्वारा पांच प्रकार की साधु सुरक्षा, दुष्कृति शब्द की व्याख्या, विनाश शब्द की व्याख्या, भगवान द्वारा दुष्टों का विनाश किस प्रकार से करते हैं वो, धर्म संस्थापना इस शब्द की व्याख्या, और अंत में भगवान ने युगे युगे ये जो दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्यों इसका प्रयोग किया। तो ये सारे विषय तो हम आज के हमारे सिटिंग में नहीं ले पाएंगे, तो हम जितने हो पाएंगे उतना आज के सिटिंग में हम लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पिछले श्लोक से संबंध, तो पिछले श्लोक में भगवान ने कब और क्यों वो अवतार लेते हैं इसके विषय में अर्जुन को बताया। यदा यदा ही, याद है, जब जब, हमने जब जब को लेकर बहुत उसकी व्याख्या की थी। तो कब और क्यों ग्लानि होती है जब जब, तो मैं उसको फिक्स करने के लिए, इंग्लिश में यदि कहें, मैं अवतरित होता हूं। अब आज के श्लोक में मानो अर्जुन और डिटेल्स जानना चाहें कि आप अवतार लेने के पश्चात कुछ थोड़ा और डिटेल में बताइए कि आप करते क्या हैं, तब फिर भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं, थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। क्या डिटेल बता रहे हैं? परित्राणाय साधु विनाशाय दुष्कृताम। तो अब कोई यदि अनजान व्यक्ति जो गीता के बारे में कुछ जानता नहीं है, जो महाभारत नहीं पढ़ा, इस संस्कृति को नहीं जानता हमारी, वो जब ये श्लोक को पढ़ता है, तो ये प्रश्न उसके मन में उठ सकता है कि क्या भाई ये कौन से भगवान हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए ये दुष्कृताम, इनका विनश्यति, मारकाट इत्यादि। तो इसमें हमको ये समझना चाहिए कि भगवान जो ये दुष्कृति का विनाश के विषय में बता रहे हैं और साधुओं की रक्षा के विषय में बता रहे हैं, तो ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं एक रणभूमि पर। इसलिए हमें इस श्लोक को उस संदर्भ में समझना है जिस संदर्भ में, जिस देश काल पात्र में ये श्लोक कहा गया। इसलिए यदि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु यही श्लोक कहते कि मैं कलयुग में अवतरित होता हूं दुष्कृति इनका विनाश करने के लिए, तो भाई पूरे कलयुग को समाप्त करना पड़ता और साधुओं की रक्षा, साधु है कहां? तो एक तो साधु नहीं है और दूसरे दुष्कृति भरे पड़े हैं, तो भगवान तो फिर अकेले खड़े रहते कलयुग में। इसलिए कलयुग में यदि चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को कहें, क्योंकि वो युग अवतार है, परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृत, तो चैतन्य महाप्रभु रणभूमि पर खड़े होकर नहीं, इसलिए ये श्लोक हम कलयुग निवासियों के लिए कैसे उपयुक्त है जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी रणभूमि कहाँ है ये, और हमारा भी रथ यही है, और हमारे कृष्ण हमारे इस रथ को यहीं अंदर हांक रहे हैं, और किसके सामने खड़ा कर रखा है, यहीं अंदर शत्रु भी खड़े हैं। षड रिपु, उनको रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु, छह अनर्थ हमारे। तो इसलिए हमें ये समझना है कि भगवान आज के श्लोक में जो ये परित्राण और विनश्यति के विषय में बोल रहे हैं, तो कलयुग में हमारे लिए हमें कोई अब जाकर धनुष बाण लेकर या तलवार लेकर या आज के जो आयुध हैं कोई AK-47 ये सब लेकर कुछ नहीं करना है। हमारे कौन सा हमारा हथियार है, वो माला, और हमारे भक्त उनको सिखाया जाता है कि सुबह उठते ही युद्ध चालू कर दो। तो सुबह उठते सो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे हरे कृष्णा के भक्त हम अपना गन लेकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए कई एक बार मैं एक भक्त के साथ कहीं जा रहा था, तो वो भक्त उनको मैं ड्राइव कर ले जा रहा था, तो वो बोले कि रुको रुको अरे मैं बंदूक लाना भूल गया। तो मैं थोड़ा डर गया, और वो ब्रह्मचारी हमारे भक्त, तो मैंने कहा प्रभु जी बंदूक? बोला हाँ, अरे मेरी बंदूक अंदर रहेगी। फिर कैसे लंबी चौड़ी सी भीड़ बैग लेकर आए। तो अब परित्राण शब्द, संस्कृत का ये शब्द है, तो ये इसका अगर हम विच्छेदन करें तो दो शब्दों से बनकर ये एक शब्द बना है, परि और त्राण, जैसे आप यहां पर पढ़ सकते हो, आप लोग सब पढ़ पा रहे हो ना। ये तो परि का अर्थ है अच्छी प्रकार एवं पूर्ण रूप से, और त्राण यहां पर सुरक्षा। तो फिर से भगवान की महिमा देखिए कि भगवान ने कितने चॉइस्ड वर्ड्स यूज किए हैं गीता के अंदर। भगवान ऐसे गलती से नहीं कुछ बोल रहे हैं कि हाँ मैं साधुओं की रक्षा करता हूं, केवल त्राण नहीं कहा, परित्राण। और ये हम आगे समझेंगे कि क्यों भगवान ने त्राण के बदले परित्राण कहा है आज के श्लोक में, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं केवल रक्षा नहीं, अच्छी प्रकार से पूर्ण रूप से रक्षा करता हूं। किसकी? जो योग्य हैं। कौन? साधु। और वो साधु कौन होते हैं या साधु किसको कहना चाहिए, उसकी भी व्याख्या हम करेंगे। परंतु यहां पर परित्राण से ये समझ में आ रहा है कि भगवान कितना सोच विचार कर एक एक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवद गीता के अंदर, और विशेष रूप से जब उनके भक्त या उनके साधु भक्त उनके विषय में जब कुछ उनको कहना होता है, तो भगवान और संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाल ही में मैं एक मेरे एक जान पहचान के हैं, तो उनको मैंने फोन किया, तो फोन से पहले एक आवाज आई, आपको हम सावधान करना चाहते हैं, ये VIP नंबर है, कुछ भी आगे कहने से पहले अपने शब्दों का चयन कीजिए और सावधान हो जाइए, फिर रिंग बजा। मैंने कहा भाई कौन VIP है भाई, अपना साधारण मेरा एक जान पहचान का ही था, लेकिन उसका कोई VIP नंबर था, तो वो एकदम ऐसे गंभीर आवाज में ये बोला गया, तो मैं थोड़ा डर गया भाई, संभाल के मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, हरे कृष्ण चलेगा ना। तो इसलिए भगवान ने देखिए, भगवान किसी एरे गहरे नत्थु ठहरे को नहीं सुना रहे गीता अर्जुन को, इसलिए भगवान भी बहुत संभल कर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे। परित्राणाय साधुनाम, इसलिए हमने ये श्लोक कितनी बार सुना होगा, बोला भी होगा, लेकिन जब तक हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये एक शब्द परित्राण का अर्थ क्या है, तो भगवान के विषय में वो प्रशंसा हमारे अंदर नहीं आती। तो अब अगली बार जब भी ये श्लोक आप सुने या कहें, परित्राण आए साधु, तो ध्यान में रखना कि भगवान ने बहुत सोच समझकर इस श्लोक की शुरुआत की है। शुरुआत इतनी सोच समझकर की है। तो ये अर्थ है परित्राण का। तो पूरा अर्थ यदि हम समझने की कोशिश करें तो अच्छी प्रकार से एवं पूर्ण रूप से सुरक्षा। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, देखिए इतना लंबा स्टेटमेंट है उसको एक वर्ड में, इसलिए हमारे शास्त्र वो पहले सूत्रों में लिखे जाते थे, वेदांत सूत्र, तो सूत्रों में लिखे जाते थे, क्योंकि पहले जो विद्वत होते थे, विद्वान होते थे, वो लोग समझ जाते थे परित्राण, तुरंत समझ जाते थे कि पूर्ण रूप से है, अधकुचड़े तरीके से सुरक्षा नहीं की गई, पूर्ण रूपेण सुरक्षा की गई है, इसलिए परित्राण ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब मैं इसके विषय में सोच रहा था और मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया कि परित्राण का अर्थ यदि पूर्ण रूप से सुरक्षा है तो अपरित्राण क्या हो गया? अपूर्ण रूप से सुरक्षा, सुरक्षा है परंतु अपूर्ण रूप से। और इस भौतिक संसार में हम क्या देखते हैं? हाँ, हमको अलग अलग प्रकार से सुरक्षा मिलती है या देते हैं, परंतु भौतिक स्तर पर जब तक कि भगवान श्री कृष्ण नहीं जुड़ते किसी भी सुरक्षा की विधि में, तो उसे परित्राण नहीं कह सकते। भगवान जुड़ गए तो हां वो परित्राण हो गया, परंतु भगवान से अलग होकर यदि कोई सुरक्षा योजना को अपनाता है किसी भी तरीके की, तो उसे क्या कहेंगे? अपरित्राण, अपूर्ण रूप से सुरक्षा। अब जैसे कि इंश्योरेंस होता है, कितने प्रकार का इंश्योरेंस आजकल विदेश में, तो भारत में तो इतने ज्यादा इंश्योरेंस आपने नहीं सुने होंगे, विदेश में तो आपने कोई अंगूठी खरीदी उसका इंश्योरेंस हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा उसका सबसे पहले वो इंश्योरेंस कर लेते हैं। बीमा योजना, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बीमा योजना, योगक्षेमम। ये श्लोक लिया कहां से उन्होंने? ये जो जो भी उनका वो जो कैप्शन है, LIC का है, LIC लाइफ इंश्योरेंस, तो लिया कहां से? गीता से। कौन जानता है कौन सा श्लोक है? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ओरिजिनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने सुनाई? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में। प्रीमियम बहुत हाई है इसलिए कोई पे नहीं कर पाता। प्रीमियम क्या है? सर्वधर्मांतरित्यज्य। इसलिए यहां की LIC से काम चला रहे हैं हम लोग। नाम दे देते हैं योग क्षेमम, लेकिन खाली नाम देने से नहीं होता, उसके पहले की 3 लाइन जरूरी है। खाली लास्ट का लाइन यूज करने से नहीं होने वाला, हम इंश्योर्ड नहीं होने वाले कंप्लीटली। तो जैसे आप देखिए कितने प्रकार के इंश्योरेंस होती है, हेल्थ, लाइफ, ट्रैवल, बिजनेस, हाउस, कार, अलग अलग प्रकार की बीमाएं हम लोग निकाल कर रखते हैं कि यदि कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए एक इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। जैसे पैदा हुए हैं, भाई पैदा होते ही शरीर है जो कि बीमारियों से भरा हुआ है, तो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये वो। कार खरीदी, कार का इंश्योरेंस करा लिया, घर खरीदा, घर का इंश्योरेंस करा लिया, शादी कर ली, वो आजकल कराना पड़ता है वो सब, कोई भरोसा नहीं है आजकल, किस तरीके से लूट के ले जाए अनऑफिशियली ऑफिशियली। तो आप देखिए कि ये जो इस संसार में हम ये मुद्दे को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहली लाइन में सुरक्षा, परित्राण का अर्थ सुरक्षा के विषय में कहा, तो हम सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इस संसार में ये इतने सारे हम सुरक्षा की योजनाएं क्यों बनाकर रखते हैं हम मनुष्य। पशु जो हैं वो तो उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई उनको चिंता नहीं, कहीं इंश्योरेंस निकालने रखा है उन्होंने। कुत्ते देखो कहीं पर भी पानी पी लेते हैं, कोई डर नहीं उनको कि क्या होगा, डेंगू होगा, ये होगा, इतने सालों से घूम रहे हैं, भौंक रहे हैं, सब कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो हम मनुष्य, हाँ हमारे अंदर ये एक खूबी है कि आहार निद्रा भय मैथुन हम बुद्धि से करते हैं, और आहार निद्रा भय मैथुन में ये जो भय है ये है डिफेंडिंग और सिक्योरिंग वनसेल्फ, इंश्योरिंग वनसेल्फ। तो देखिए हमने अपनी बुद्धि से और अपने अनुभव से यह पहचान लिया है कि इस भौतिक संसार में पदम पदम पर विपदा है, इसलिए फिर हमने हर चीज को सुरक्षित करने की योजनाएं बनाना शुरू किया बुद्धि लगाकर। अब इसमें तकलीफ ये हम देखते हैं, आप देखिए मैं अगर आपको पूछूं कि ये जो सब लिखा हुआ है, अलग अलग प्रकार के जो इंश्योरेंस हम मनुष्य निकालते हैं, मैं अगर आपको पूछूं क्या ये बिजनेस, हाउस, कार, ट्रैवल, लाइफ, हेल्थ, ये सब हमारे मृत्यु के भी कारण बन सकते हैं ना, कार, ट्रैवल, हमारा शरीर, ये जो भी हम, जैसे कि मान लो हमने घर बनाया, अपने स्वयं के लिए घर बनाया, अब घर क्यों बनाता है कि मैं उस घर में सुरक्षित रहूंगा, एक छत रहेगी, बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा, धूप अंदर नहीं आएगी, मैं सुरक्षित और इच्छके अंदर नहीं आएंगे, मैं सुरक्षित रहूंगा। एक छोटे से भूकंप का झटका, मुझे याद है 1992 में हमारा जो कंटिंजेंट सिलेक्ट हुआ था रिपब्लिक डे परेड के लिए 26 जनवरी, तो हम लोग, हमारा पूरा वो बैच सिलेक्ट हुआ था रिपब्लिक डे परेड के लिए, तो उसकी ट्रेनिंग 3 महीने पहले शुरू होती है, मतलब जनवरी से 3 महीने पहले उसकी ट्रेनिंग दिल्ली में शुरू होती है। तो हमारे लिए रहने की व्यवस्था टेंट में की गई थी, हम लोग टेंट्स में रह रहे थे, तंबू, और मुझे याद है एक तंबू में 4 चारपाई और हम लोग वो चारपाई पे ही सोते थे, और हमारा जो भी एक सूटकेस या बक्सा और नहाने के लिए एक बाल्टी, तो बाथरूम वगैरह बाहर हुआ करता था, तो वहीं पे सो, और सुबह सुबह 3:30 बजे निकल जाओ राजपथ पर ट्रेनिंग, लेफ्ट राइट 3 घंटा उसकी ट्रेनिंग होती थी। तो एक दिन हुआ ऐसा, दोपहर के समय हम लोग थक के थोड़ा ऐसे अपने चारपाई पे लेटे हुए थे दिल्ली में, रेस कोर्स वो जगह थी, भूकंप का झटका आया, और मैंने अपनी आंखों से, बाल्टी थी मेरे चारपाई के नीचे, गड़गड़गड़ आवाज आ रही है, उसके अंदर पूरा पानी बाहर आ गया, सामने पेड़ हिलते हुए दिख रहा है। पहले मुझे लगा भाई मैं तो ठीक हूं, मैंने तो आज तक कभी कुछ चढ़ाई भी नहीं है, तो मैं ये क्या हो रहा है? तो अचानक वहां पे सायरन शुरू हो गया, भूकंप, रेड अलर्ट। तो सभी मैंने देखा जो बाकी ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में, सब लोग चिल्ला चिल्ला के बाहर आ रहे हैं। जो क्वार्टर्स थे उसके अंदर, जो लिविंग क्वार्टर्स में से सब चिल्ला चिल्ला के बाहर आ रहे हैं। केवल हम लोग जो तंबू में थे एकदम निश्चिंत, क्या गिरेगा तो क्या गिरेगा, तंबू ही गिरने वाला। तो वो पूरे एयरफोर्स यूनिट में सबसे ज्यादा जो निश्चिंत थे बिना चिंता के, वो हम लोग ही थे। तो अब देखिए, अभी हमको लग रहा हो कितनी सुंदर ये सीलिंग है, वो वॉलपेपर कितना अच्छा लग रहा है। एक भूकंप का झटका आ जाए, कोई वॉलपेपर दिखाई नहीं देगा हमको। अभी हमको खाली वो बीम्स दिखाई देंगे, अगर वो गिर गई हमारे ऊपर तब क्या होगा। तो यही छत जो हमको लग रहा है कि हम इसके अंदर सिक्योर्ड हैं, ये हमारे मृत्यु का कारण बन सकती है। वही कार जिसको हम सिक्योर करके रखे हैं, वही कार हमारे मृत्यु का कारण बन सकती है। यही शरीर जिसको हम इंश्योर कर लें, चाहे इसके अंदर के जितने भी पुर्जे सब इंश्योर कर ले, पता नहीं कौन सा पुर्जा क्या इसके अंदर हो जाए। जैसे हाल ही में मेरा एक ऑपरेशन हुआ, यहां से वो गॉल ब्लैडर के अंदर पत्थर निकले, अभी देखो शरीर के अंदर घुस गए पत्थर। और वो भी वो पित्ताशय के अंदर, इतने बड़े बड़े। तो कोई भी, ये हमारे जो अंदर का शरीर है, शरीर के अंदर जो हमारे अंग हैं, कोई भरोसा नहीं कि ये हमारे शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, अंग के अंदर क्या चल रहा है। वो मेरे को डॉक्टर वो वीडियो दिखा रहे थे ऑपरेशन का, तो हमारा जो लिवर होता है, लिवर के नीचे वो दिखाई भी नहीं देता है, वो गॉल ब्लैडर इतना सा, उसके अंदर पत्थर, उसको कैसे, तो उन्होंने वो सोल्डरिंग आयन से बाहर निकाला, काट के। वो पत्थर तो निकाल नहीं सकते, पूरे गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल के फिर दिखा रहे हैं, प्रभु जी ये है अपिका है। और आसक्ति देखो कितनी होती है हमारी, मेरा, अच्छा मेरा ही मांस का टुकड़ा है छोटा सा, लेकिन मेरा है। अरे रोगग्रस्त है लेकिन मेरा है। तो ये जो इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं यहां पर, कि हर चीज इस भौतिक संसार में क्या है, अपरित्राण। ये नहीं कि सुरक्षा, ये शरीर हमको हां अलग अलग प्रकार से सुरक्षा देता है, लेकिन देखिए इसके पीछे धोखा क्या है। धोखा ये है कि जब हम किसी वस्तु से सुरक्षा प्राप्त करते हैं और हमको विश्वास रहता है कि ये वस्तु या ये व्यक्ति मुझे सुरक्षा देगा, और उसके अंदर खामियां निकल जाती है, तो हम अपना पूर्ण विश्वास डाल देते हैं गलती से उसके ऊपर, और वहां से अपूर्ण सुरक्षा मिलती है। यहां पर कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है भौतिक संसार में, हमारा पूर्ण विश्वास चला जाता है उसके ऊपर और वहां से अपूर्ण सुरक्षा। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, आंख हमारे मूंद कर हम सो जाते हैं, रिजर्वेशन चाहिए सोने के लिए, और ड्राइवर चला रहा है ट्रेन, निश्चिंत हम सो रहे हैं कि ड्राइवर ट्रेन चला रहा है और सुबह मुझे पहुंचा देगा मेरे गंतव्य स्थान। अचानक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हमने अपना पूर्ण विश्वास डाल दिया, परंतु वहां से सुरक्षा कितनी मिली, अपूर्ण सुरक्षा। जैसे हिरण्यकशिपु, यदि इस पूरी सृष्टि में इतिहास में देखा जाए तो हिरण्यकशिपु जैसा पॉलिसी होल्डर कोई नहीं था। उसने जो प्रीमियम भरा था अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए, इतने सारे उसने अलग अलग तरीके से अपने लाइफ को इंश्योर किया था, ब्रह्मा जी से मांग लिया था कि मैं आकाश में नहीं, मैं जल में नहीं, मैं पृथ्वी पर नहीं, मैं अंदर नहीं, बाहर नहीं, सुबह नहीं, मैं रात में नहीं, 84 लाख योनियों में से किसी एक भी योनि से न मरूं। अलग अलग प्रकार से उसने कितने सब तरीके से उसने अपने आप को क्या कर लिया था, इंश्योर्ड। आज की भाषा में उसने अपने आप को इंश्योर कर लिया था। और भगवान नरसिम्हदेव जब प्रकट हुए तो उनके पास पूरी उसकी पॉलिसी हाथ में थी। भगवान ने धोखा नहीं दिया, भगवान ने कहा, एक एक पॉइंट देखा, अच्छा इसने ये इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल किए हैं कि इसकी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इसको न तो कोई मनुष्य मार सकता है न कोई पशु मार सकता है, चलो मैं न तो नर, मैं न तो सिंह, मैं नरसिंह। सेकंड इसका कंडीशन था कि मुझे न तो कोई अंदर किसी के मार सकता है न बाहर, चलो तेरे को चौखट पे ले जाता हूं, न अंदर न बाहर। तो ऐसे कर भगवान ने उसकी पूरी पॉलिसी में, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जितने टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सारे फुलफिल करते हुए उसे खत्म किया। इसे कहते हैं भौतिक संसार। आज का श्लोक जो है, दुष्कृताम विनश्यति विनाशाय, कि भगवान न केवल पूर्ण रूप से सुरक्षा देते हैं साधुओं को बल्कि पूर्ण रूप से दुष्कृतियों को मारते भी हैं। तो इसलिए ये श्लोक की पहली लाइन से हम ये समझ रहे हैं कि इस संसार में चाहे कोई कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ले, चाहे कोई अरबपति बन जाए, चाहे कोई कितने भी अलग अलग प्रकार से सिक्योरिटी अपने लिए इकट्ठा कर उसके बीच में रहे, कितने भी ऐश्वर्यशाली देश में रहे, ये समझ लीजिए इस संसार में क्या है, अपरित्राण। जब तक कि भगवान श्री कृष्ण को हम नहीं जोड़ते तो अब यहां अगर हम अपरित्राण को देखें तो कलयुग कलयुगी अपरित्राण क्या है, पूर्ण रूप से असुरक्षा। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ कलयुग। जैसे भगवान ने जब परित्राण के विषय में कहा कि पूर्ण रूप से सुरक्षा, तो यहां पर मूर्तिमान कली भी बोल रहा है कि हां मैं भी पूर्ण रूप से देता हूं, क्या देता हूं, असुरक्षा। हां तो हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि मान लो कोई कार चलाता है, तब जब वो कार चला रहा है तो उसे उस कार पर भरोसा है कि मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूं तो कार तेज भाग रही है, तो उसको भरोसा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो बगल में ब्रेक भी है, तब उसको भरोसा सुरक्षा, कौन सी सुरक्षा पर है, ब्रेक, है ना। अब जब ब्रेक फेल हो जाता है, अब जब होता कई बार ब्रेक फेल हो जाता है और वो भी किसी ढलान पर, किसी घाट से नीचे उतर रहा है, ब्रेक फेल हो गया। ऐसे एक मारवाड़ी भाई बैठे थे टैक्सी में, तो ब्रेक फेल हो गया, तो टैक्सी वाला अभी वो ढलान से नीचे वो बोल रहा है कि भाई ब्रेक फेल हो गया, अभी गाड़ी रुक नहीं रही। अब ये हमारे मारवाड़ी भाई हैं, बोले सबसे पहले मीटर बंद कर, सबसे पहले मीटर बंद कर। उनको मीटर की चिंता हो रही थी। तो डिपेंड करता है हम किसको वैल्यू करते हैं तो किसकी चिंता होती। तो कार पर हमने विश्वास करकर उसमें बैठे और जब वो कार दगा दे जाती है तो कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार ब्रेक फेल होने की वजह से या दूसरी कार गलत चलाने की वजह से एक्सीडेंट्स जो होते हैं। तो भौतिक संसार की विशेषता क्या है कि वो हमको विश्वास की गाजर दिखाते हैं। विश्वास की गाजर दिखाकर हमें असुरक्षा दे देते। यदि कार होती नहीं तो कभी विश्वास ही नहीं करता, ब्रेक भी नहीं होता तो उस पर विश्वास क्या करता है ना। तो क्योंकि थोड़ा बहुत विश्वास दिलाती है ये कार या ये भौतिक संसार हमको, उससे हमारा पूर्ण विश्वास लेकर हमें धोखा दिया जाता। वैसे ही ये शरीर और जो भी संबंधित इस भौतिक संसार में उसके कार्यकलाप इसी प्रकार से चलते हैं। अब यदि हम भगवान के उस शब्द पर फिर से आए, परित्राणाय साधु नाम, तो परित्राण का अर्थ हमने समझा कि अच्छी प्रकार से एवं पूर्ण रूप से सुरक्षा। तो प्रश्न अर्जुन का यह है कि भाई आप तो आपकी तरफ से परित्राण अच्छी प्रकार से पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का वादा कर रहे हो, तो इस तरफ योग्य कैंडिडेट कौन है? तो योग्य कैंडिडेट कौन है कि जिसके बारे में आप इतने विश्वास से उसको आश्वासन दे रहे हो, तो उसकी भी तो कोई योग्यता होगी। तो भगवान कह रहे हैं हां, वो योग्य कैंडिडेट मेरे परित्राण का है कौन? साधु नाम। साधु नाम वो योग्य कैंडिडेट है। तो अब प्रश्न ये उठता है, साधु कौन है? तो देखिए, एक एक शब्द से प्रश्न उठ रहा है और हमें उसके उत्तर खोजने हैं। तो भगवान ने कह दिया कि मैं धर्म की संस्थापना हर युग में करने आता हूं। थोड़ा डिटेल्स आज के श्लोक में दिया है, कैसे? सबसे पहले साधु की सुरक्षा करकर, पूर्ण रूप से सुरक्षा करकर। अगला प्रश्न है कि अब असली साधु कौन है? तो प्रामाणिक सच्चा साधु कौन है? ये तो नहीं है। हाँ, क्या केवल साधु के वस्त्र धारण करने लेने से कोई साधु बन जाता है? दाढ़ी बढ़ा ली, ये सब भस्म लगा लिया, जटा धारण कर ली, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, कंठी माला, ये वो, क्या ये सब से व्यक्ति साधु कहलाया जाएगा? ये तो सब बाहरी वेशभूषा या वर्दी उसको बोल सकते हैं, या कई बार दिखावा बस केवल। तो असली या सच्चा प्रामाणिक साधु, बचपन में हमको एक कथा सुनाई गई थी, उसके ऊपर एक हमारे ने टीम ने ड्रामा भी किया था। एक राजा था और ये राजा रोज धर्म ग्रंथ पढ़कर अपने राज दरबार में जाता। तो इसने एक बार पुराणों में पढ़ा कि यदि किसी बद्ध जीव को आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो उसे प्रामाणिक सच्चे साधु का संग करना चाहिए। तो ये जब राजा ने पढ़ा तो अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मुझे एक प्रामाणिक सच्चा साधु चाहिए, ढूंढ कर लाओ। मंत्री बोले क्यों, संग करना है? आज मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि सच्चे प्रामाणिक साधु का संग करना। तो मंत्री गए ढूंढने के लिए। अब क्या कहा था, प्रामाणिक सच्चा साधु, साधु तो बहुत मिले, यहां वहां बहुत घूम रहे थे, लेकिन राजा ने प्रामाणिक और सच्चा ये वाला मांगा है, तब वो कहीं मिला नहीं। हताश होकर मंत्री वापस लौटता है, नहीं मिला, दूसरे दिन नहीं मिला। तो राजा कहता है कि ठीक है, यदि तुम सच्चा प्रामाणिक साधु ढूंढ कर ले आओगे तो मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें भेंट में दूंगा। थोड़ा लोभ दिया, प्रलोभन दिया। और यदि तुम कल शाम तक नहीं ढूंढ के लाए तो तुम्हारी नौकरी गई। तब देखिए, 1000 स्वर्ण मुद्राएं यदि ढूंढ कर ले आओ, नहीं ढूंढ कर ला पाया तो नौकरी गई। तब इसने किया क्या कि हालांकि ये ढूंढने के लिए निकल गया, कहीं मिला नहीं इसको कोई प्रामाणिक सच्चा साधु, तो इसने देखा एक छोटे से गांव में, पिछड़ा हुआ सा गांव, वहां पर एक व्यक्ति लंबी दाढ़ी, दिखने में लंबी दाढ़ी उसकी साधु जैसे ही, बड़े बड़े उसके बाल और चिथड़े वो पहना हुआ मोची, उस गांव का एक कोने में रहता हुआ एक मोची था। तो उसने देखा ये दिखने में तो दिख रहा है साधु जैसा, इसको थोड़ा गेरुआ वस्त्र पहना देंगे तो दूर से तो लगेगा साधु ही है, लेकिन है तो ये मोची। अब राजा कितना संग करेगा, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता? तो ऐसा करता हूं कि इसको मैं थोड़ा प्रलोभन देता हूं कि भाई तू ढोंग रच प्रामाणिक साधु का, तो मेरी नौकरी भी बची रहेगी और मेरे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाएगी, उसमें से मैं कुछ पोर्शन इसको दे दूंगा, 20-30 मुद्राएं इसको दे दूंगा, तो इसका भी काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से विन विन सिचुएशन, ये मंत्री ने सोचा। तो जाकर उसको पूरी योजना सुना दी मोची को कि ऐसे ऐसे भाई तू राजा के पास मैं ले जाऊंगा तो तू प्रामाणिक सच्चा साधु का स्वांग रचाना। तो इसने कहा वो क्या होता है, प्रामाणिक सच्चा साधु का ढोंग कैसे रहे? राजा तेरे को टेस्ट करेगा, हमारा राजा बहुत चतुर है, वो टेस्ट करेगा। कैसे टेस्ट करेगा, तेरे को धन संपत्ति तेरे सामने अर्पित करेगा तो मुझे क्या कर? मना कर देना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मैं देने वाला हूं तो मत लेना। और ऐश्वर्य राजा लाकर, अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य, प्रलोभन, धन संपत्ति, ये सब कुछ अर्पित करके टेस्ट करने की कोशिश करेगा, सबको मना कर देना। ठीक है, तो उसको पूरा ड्रामा कंपनी में जैसे उसको मेकअप कराकर लेकर गए, थोड़ा कुछ सिखा दिया कि जब जरूरत पड़े बोलना, नहीं तो बोल देना मौनी बाबा हैं, बोलते नहीं। तो राजा के सामने, तो राजा ने देखा कि अरे दिखने में तो एकदम पहुंचा हुआ साधु लग रहा है ये। तो राजा ने अभी टेस्ट करने के लिए थाली के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं कि महाराज आपके लिए मेरी तरफ से दक्षिणा। तो ये देखो, ये वो राजा का लिफाफा था, वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो अब ये मोची देख रहा है 1000 स्वर्ण मुद्राएं, मैंने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं और मुझे दे रहा है। तो मंत्री मंत्री उसको पीछे से कहता है, मना कर, मना कर, मना कर, तू प्रामाणिक साधु है, मना कर। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये सब नहीं लेता। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य, वो 56 भोग और ये बहुत से उसकी जो सुंदर दिखने वाली अप्सराएं, दासियां, उनको अर्पित किया, ये सबको उसने मना कर दिया। तो राजा बहुत खुश हुआ कि भाई ये तो प्रामाणिक सच्चा साधु, ऐसा बैरागी। तो एक दो दिन उसको अपने महल में रखकर फिर बाद में ये मोची चला गया जो उनके प्लान के अनुसार। तो अब इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिली मंत्री को, क्योंकि इसने ऐसा काम किया, अच्छा प्रामाणिक साधु लेकर आए। तो अब इसने सोचा कि मुझे तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई, अब उसको मैं नहीं भी दिया तो ना तो काम हो गया, लेकिन उसने सोचा अगर वो आ गया और मेरा पर्दाफाश कर दिया, भांडा फोड़ दिया मेरा, तो राजा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो बुद्धिमानी है कि जो मैंने प्रॉमिस किया था जाके दे लूं। तो फिर दो तीन दिन बाद मंत्री गया उसी गांव में जो उन्हें प्रॉमिस किया था वो को कमीशन देने के लिए। जब वो गया तो वो मोची जहां पहले रहता था वहां मिला नहीं। तो अब ये मंत्री ढूंढ रहा है, गांव वालों को पूछा कि ये मोची यहां पे रहता कहां गया। बोला भाई वो तो साधु बन गया। अरे नहीं, वो तो मैंने बनाया था उसको। बोला नहीं 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 नहीं, वो साधु बन गया, वो चला गया सब कुछ छोड़ छाड़ के। क्या? बोला हाँ, वो अभी पहाड़ी, वो जो अपनी चोटी है वहां पर ध्यान साधना में लगा हुआ है। तो मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो गया चोटी के ऊपर, पहाड़ी पर गया, जाकर देखा तो सच में लगा हुआ। तो मंत्री जाकर पूछता है, अब देखिए ये स्टोरी यहां पर सीरियस होती है। तो मंत्री जाकर उसको पूछता है कि भाई क्या हो गया, भाई अपना ड्रामा तो खत्म हो गया, तुम अभी तक उसी रोल में हो। तो जो जवाब अब ये मोची देता है वो सुनने लायक। मोची कहता है कि मुझे एक साक्षात्कार हुआ है जीवन में, और वो साक्षात्कार आपने दिलाया मुझे। वो ये साक्षात्कार दिलाया कि जब मैं मोची से एक ढोंगी साधु बना, राजा की नजरों में तो प्रामाणिक था लेकिन हम दोनों जानते थे कि मैं ढोंग रच रहा था। तो मैंने देखा कि एक ढोंगी साधु होने के बावजूद मुझे इतना ऐश्वर्य मिल रहा था भौतिक। तो मुझे ये साक्षात्कार आया कि मैं अगर सच्चा साधु बनूं तो मुझे सच्चा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। यदि झूठा साधु बनकर मुझे इतना ऐश्वर्य झूठा इस भौतिक संसार का प्राप्त हो सकता है, तो मुझे साक्षात्कार ये आया कि यदि मैं एक सच्चा साधु प्रामाणिक बनूं तो जो प्रामाणिक सच्चे साधु होते हैं वैरागी, वो क्यों उस वैराग्य को अपनाते हैं? क्योंकि उनको सच्चा धन मिलता है, भगवान का प्रेम धन वो उनको प्राप्त होता है। तो ये इस मोची का साक्षात्कार हुआ और उसके पश्चात फिर वो एक प्रामाणिक सच्चा साधु बना, सच्चे प्रामाणिक ऐश्वर्य के पीछे। तो प्रश्न अब यही है कि ये चालू कैसे होगा। तो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक लेते हैं जिसके अंदर साधु अपने आप को कौन से आभूषणों से सुसज्जित करता है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई स्त्री है, वो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित करती है। तो एक साधु अपने आप को सुंदर कैसे बनाता है, साधु के आभूषण क्या है, इस श्लोक में बताया गया। जैसे आप यहां पर पढ़ोगे, सच्चे साधु के सच्चे आभूषण, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्व देहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु आभूषण। ये आभूषण है साधु के। सबसे पहला आभूषण तितिक्षव। तितिक्षव का अर्थ है उसके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। सच्चा साधु वह है जिसके अंदर ये आभूषण उसने पहन रखा है, सहनशीलता का। तितिक्षा उसको कहते हैं, टॉलरेंस। और कई बार हम देखते हैं कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी बहुत कुछ टॉलरेट करता है। बंबई में आप जो देखो लोकल ट्रेन में रोज जो सफर करते हैं, बहुत तितिक्षा होती है उनके अंदर। विरार फास्ट पकड़ कर जा रहे हैं या चर्च गेट फास्ट पकड़ कर रोज भीड़ में यहां वहां धक्के खाते हुए 20-20 25-25 साल से कर रहे हैं। तितिक्षा, कितनी तितिक्षा है। तो कोई कहेगा भाई एक तो आभूषण डाल लिया तितिक्षा का इसने। नहीं, तितिक्षा के साथ कारुणिका उसके अंदर करुणा होनी चाहिए और तब समझ में आएगा कि वो सहनशीलता वो दूसरों के उद्धार के लिए अपनाता है, स्वार्थ के लिए नहीं। इस संसार में एक भौतिकतावादी व्यक्ति जैसे हिरण्यकश्यपु के अंदर बहुत तितिक्षा थी, ऐसी कठोर तपस्या उसने की थी, अपने पैरों के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर 100 स्वर्गीय वर्ष, परंतु उसके अंदर कारुणिका ये आभूषण नहीं था, वो स्वार्थ के लिए सब कुछ कर रहा था, इसलिए वो दिव्य तप नहीं था। तो कारुणिका और करुणा दूसरे जीवों के प्रति एक प्रामाणिक साधु के अंदर कब आएगी? जब वो सब देहधारियों का सूरत बनेगा, और देहधारियों का सूरत बनने के लिए उसे अपना रिश्ता भगवान से जोड़ना होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं सुरदम सर्वभूतानाम, असली सूरत भगवान है। तो भगवान को जब वो प्रदान करेगा जो असली सूरत है सबके, तब जाकर वो ये आभूषण साधु का अपने ऊपर अपनाएगा, सुरदम सर्व देहिनाम। और जब वो इस प्रकार से सब देहधारियों का सूरत बनेगा, तब अजात शत्रवः, तब जाकर उसका कोई शत्रु नहीं होगा। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई पांडव जो थे वो तो इतने पहुंचे हुए साधु थे, तो उनके तो कितने शत्रु, ये युद्ध हुआ 64 करोड़, जो इतने योद्धा इकट्ठे हुए, तो यदि शत्रु भी किसी साधु का कोई हो जाता है तो साधु उसके अंदर शांत रहता, शांता, वो हर समय उसका सुहृद चाहता है, इज ऑलवेज द वेल विशर। इसलिए प्रभुपाद हर समय क्या साइन करते थे, योर एवर वेल विशर, नित्य रूप से जो जिनके अंदर करुणा होती है, जो सुहृद होते हैं। और इसलिए ऐसे जो साधु के लक्षण अपने अंदर को अपना के रखता है, तो वो व्यक्ति है असली साधु, सच्चा प्रामाणिक साधु। तो ये है श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का श्लोक। अब यदि हम साधु शब्द का विच्छेदन कर समझने की कोशिश करें, तो साधु शब्द का निर्माण साध शब्द से हुआ है, और साध ये शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है समाप्त एवं पूरा करना, दूसरा अर्थ है जीत लेना एवं वश में करना। तो साधु कौन है, जिसने क्या साध लिया है, जन्म मृत्यु को जो समाप्त कर पाए, जिसने ये कला जान ली है कि जन्म और मृत्यु को कैसे समाप्त किया जाए, और उसके साथ साथ अपनी 10 इंद्रियां एवं मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अपना मन, उसको कैसे जीतना। कई बार लोग कहते हैं कि अरे भाई ये साधु जो हैं ये क्या काम करते हैं, निठल्ले, ये शब्द सुना आपने, निठल्ले, या अंग्रेजी में पैरासाइट्स ऑफ सोसाइटी, गुड फॉर नथिंग। पहले जब अपने हरे कृष्णा के ब्रह्मचारी सन्यासी भक्त पुस्तक वितरण करते हुए कहीं देखे जाते थे, तो लोग कहते थे गो गेट अ जॉब। अब प्रश्न ये है कि सबसे मुश्किल जॉब क्या है, एक प्रामाणिक साधु सबसे मुश्किल जॉब और सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट को संभव करने में लगा रहता है। सबसे मुश्किल जॉब ये दो चीज, जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना और अपने स्वयं के मन और ये 10 इंद्रियों को वश में रखना, इससे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसलिए कोई प्रामाणिक सच्चा साधु जो है वो कार्यरत रहता है इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने। So who says that a sadhu is jobless or a sadhu is not working hard? Prabhupada said he is working extra. जैसे हमने वो पढ़ा, तितिक्षव कारुणिका सुरदम सर्व देही नाम, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए. अब हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण वो साधु शब्द की व्याख्या या ये साध शब्द की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में करते हैं. तो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में साधु शब्द का अर्थ ये हुआ. ये दोनों अर्थ को अगर हम फिर से लें तो भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में साधु प्रामाणिक वो है जिसने अनर्थों को समाप्त किया है और जिसने शुद्ध भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया. तो पिछले स्लाइड से आपको यदि याद है तो यही दो शब्द को भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में अब कहा गया है. तो साधु का अर्थ हुआ श्री कृष्ण साधयति इति साधु, जिसने श्री कृष्ण को अपने शुद्ध साधना से जीत लिया वो है प्रामाणिक सच्चा साधु. तो अब इस परिभाषा से यदि हम देखें तो माता यशोदा, क्या उसको हम साधु कहेंगे? हां, क्योंकि माता यशोदा ने अपनी साधना से शुद्ध भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया. एवं संदर्शित यंग हरिणा भृत्य वश्यत, भगवान जो कि सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, वो माता यशोदा के भृत्य बन गए. स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं स ईश्वरं वशे, और वो किसके वश में आ गए? माता यशोदा के एक ग्वालन के वश में आ गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शुद्ध साधना से भगवान को जीत लिया. तो इसलिए यहां पर यह समझ में आ रहा है कि केवल वेशभूषा धारण करने से कोई साधु नहीं बनता. चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में है, चाहे कोई संन्यास आश्रम में है, चाहे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसने ये गुण हासिल कर लिए हैं भगवान को जीतने का अपने शुद्ध साधना से और अपने अनर्थों को नष्ट करते हुए, तो वो है सच्चा प्रामाणिक साधु. और ऐसे सच्चे प्रामाणिक साधु के विषय में भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधु नाम. अब जब हम साधना की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं योग साधना में लगा हूं, वो भी मेरी एक साधना है. कोई स्वाध्याय में लगा है वो कहेगा वो भी एक मेरी साधना है. कोई तप में लगा है, मेरी भी वो एक साधना है. तो यदि ये जो हमने संस्कृत कई वाक्य लिखा लिया श्री कृष्ण साधयति इति साधु, तो भगवान 11वें स्कंद में इस श्लोक के द्वारा उद्धव गीता में उद्धव जी को बता रहे हैं न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपोस्त्याग यथा भक्तिर मम ऊर्जित, कि मुझे कौन जीत पाएगा? योग से नहीं, तप से नहीं, केवल स्वाध्याय से नहीं, बल्कि जिसने इन सब को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर मेरे प्रति भक्ति की ऊर्जा प्राप्त कर ली. वन हु हैज जनरेटेड भक्ति, ओनली ही कैन कॉन्कर मी. इसलिए ये हम श्लोक इसलिए ले रहे हैं कि हम समझ जाएं कि वो साधना कौन सी होनी चाहिए. चाहे हम स्वाध्याय में लगे हों, योग में लगे हों, तप में लगे हों, वो साधना से यदि भक्ति की ऊर्जा हो रही है तो हम भगवान को जीत पाएंगे, तब जाकर वो प्रामाणिक साधु बन पाएंगे. अब गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने अपने मुख से एक साधु के विषय में कहा है और बहुत ही ये एक होप गिविंग श्लोक है, कई बार थोड़ा विस्मय में भी डालने वाला श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं अपिचे सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुर एव समंतव्य. भगवान कह रहे हैं मेरा मंतव्य है यदि वो साधु अगर गलती से उसने कोई दुराचार भी कर दिया, भगवान कह रहे हैं केवल दुराचार नहीं सुदुराचार. तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं और चक्रवर्ती पाद भी लिखते हैं गलती से, यदि एक्सीडेंटली गलती से कोई साधु दुराचार या सुदुराचार भी कर देता है, परंतु अनन्य भाग मेरी अनन्य भक्ति में या मेरे अनन्य भजन में लगा रहता है, भगवान कहते हैं मेरा मंतव्य क्या है, मैं उसे फिर भी साधु कहता हूं। ये भगवान के डायरेक्ट शब्द हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उसे फिर भी साधु कहता हूं। यदि गलती से वो सुदुराचार में भी लग जाए, फिर भी भगवान कहते हैं मेरा मंतव्य है कि वो फिर भी साधु है। और इस श्लोक के पश्चात भगवान थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाते हुए अर्जुन को कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सश्वक शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, कि हे कौन्तेय तुम जाकर यह आह्वान कर दो सारी दुनिया को कि वो सुदुराचारी साधु यदि अनन्य भक्ति में मेरे लगा हुआ है, क्षिप्रम जल्द ही वो धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांतिम निगच्छति, और वो शाश्वत शांति को प्राप्त होगा, ये मेरा आश्वासन है। और ये ऐलान कर दो पूरे सृष्टि में अर्जुन, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त जो है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो देखिए ये भगवान ने आज का जो हम श्लोक ले रहे हैं 4.8 और ये 9.30 और 9.31 में भगवान जो परित्राण के विषय में कह रहे हैं। तो अब भगवान ने 9.30 में कौन सा जो विशेष गुण है साधु का, जिसको ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा ऐलान करवाया कि ये जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है और धर्मात्मा बनने से पहले मेरे मंतव्य के अनुसार वो फिर भी साधु कहलाएगा यदि वो सुदुराचार में भी गलती से लगा हुआ दिखा तो भी। तो भगवान यहां पर फोकस डाल रहे हैं अनन्य भजन, अनन्य भजन में यदि वो लगा है तो अनन्य भाव से जो भजन है वो व्यक्ति को साधु बनाता है। तो पॉइंट यहां पर हम किस पर गौर कर रहे हैं, अनन्य भाव से जो भजन करता है वो है साधु। अब मैंने अपने श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत में कुछ थोड़ा रिसर्च किया इस अनन्य भाव को समझने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी टीका में वो कहते हैं कि भगवान ये जो 9.30 में अनन्य भाव के विषय में कह रहे हैं कि साधु जो अनन्य भजन में लगा है उसको वो नाम देते हैं निरंतर भजन। और एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक है जो हम अभी लेंगे, उस श्लोक के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि ये जो निरंतर है, ये शब्द अनन्य और निरंतर, ये इसको सिनोनिम्स उन्होंने कहा है। तो निरंतर भजन या अनन्य भजन की परिभाषा क्या है, तो ये दो श्लोक, एक तो श्रीमद् भागवत का श्लोक है और एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक है जिसके अंदर निरंतर शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु स्वयं कुलीन ग्राम के जो निवासी आए थे उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि हमें वैष्णव कौन है इसको इसके बारे में बताइए, तो चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं ये, कृष्ण नाम निरंतर याहार वदने से वैष्णव श्रेष्ठ भज ताहार चरणे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो निरंतर रूप से कृष्ण नाम लेता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अ पर्सन हु इज ऑलवेज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज टू बी कंसिडर्ड अ फर्स्ट क्लास वैष्णव एंड योर ड्यूटी इज टू सर्व हिज लोटस फीट। निरंतर उसके वदन से कृष्ण नाम निकलता रहता है। तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने निरंतर ये शब्द इस्तेमाल किया। और अब श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, विरक्तश्च इंद्रिय रतौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेत अद्ध विमुक्तये. If one is very serious about liberation, he must stick to the process of transcendental loving service, engaging 24 hours a day in the highest stage of ecstasy, and he must certainly be aloof from all activities of sense gratification. तो यहाँ पर भी निरंतर. तो चक्रवर्ती अपने सरस्वती ठाकुर इन्होंने अपनी टीका में इस निरंतर शब्द के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने पांच प्रकार से इसको समझाने की कोशिश की है. तो सबसे पहले निरंतर का अर्थ क्या है ये हम समझ लें. जैसे यहां पर लिखा होगा निर और अंतर से बना है निरंतर, विदाउट इंटरवल. निरंतर का अर्थ क्या है कि वो भजन जो बिना इंटरवल के किया जाए. अब देखिए हम जब माला उठाते हैं तो कितनी बार इंटरवल होता है और कितने अलग अलग तरीके से. कई बार तो माला उठाते ही इंटरवल तो छोड़ दिए, दी एंड हो जाता है पिक्चर का. तो सरस्वती ठाकुर अब बता रहे हैं कि ये जो अंतर है हमारे भजन में, यदि हम साधु बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे भजन को अनन्य होना है या निरंतर होना है, तो ये अंतर क्या है, ये कौन कौन से अंतर आते हैं. तो वो बताते हैं पांच प्रकार के अंतर हैं. ये डायरेक्टली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है. तो पांच प्रकार के अंतर या इंटरवल है. पहला अंतर वो बताते हैं भौतिक इच्छाएं. अब देखिए यहां पर ये समझना होगा कि ये सारे जो इंटरवल्स बताए हैं उन्होंने, भौतिक इच्छाओं के वजह से भौतिक शरीर के वजह से हम सांसारिक ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं. सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद बुरी संगत, और बुरी संगत में होता क्या है, नास्तिक विचार. तो ये रिलेटेड है एक के बाद एक. ये सब अंतर हैं हमारे कृष्ण भजन में. इंटरवेल्स ही हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरवेल्स हैं. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो इंटरवेल्स हैं इसकी शुरुआत होती है जब हम आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार में आते हैं. और यहां पर तीन गुणों के अधीन जब भौतिक इच्छाएं हमारी पनपती हैं, तो भौतिक इच्छाओं की वजह से भौतिक शरीर प्राप्त होता है और फिर यह सिलसिला चालू रहता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का. तो सबसे पहले हम आत्मा है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परंतु भगवान से विमुख होकर जब इस भौतिक संसार में थोड़ी सी भौतिक इच्छा लेकर आते हैं तो थोड़ी सी भौतिक इच्छा तीन गुणों के आवेश में या उनके संग में, ये भौतिक थोड़ी सी इच्छा हमारी बड़ी होती लगती है. जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चे शुद्ध होते हैं, पैदा हुआ है एकदम मासूम, उसको क्या कहते हैं, मासूम है, नादान है, बच्चे मन के सच्चे, उनको हम प्योर कहते हैं. चिल्ड्रन आर The pure aspect of God, as they are told. परंतु वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर कितने कॉम्प्लेक्सिटीज शुरू हो जाते हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, दगा, षड्यंत्र, ये वो. वही बच्चा, उसको हम बचपन से कई बार लगता है वो बड़े ही नहीं होने चाहिए. इसलिए चतुष कुमार, जैसे मैं आपको एक प्रोग्रेसिव एक बच्चे के एक रूपरेखा देता हूं. तो छोटा बच्चा अभी बोलना सीखा है, 3 साल का, 3.5 साल का, वो अपनी मम्मी को कहता है, मम्मा आई लव यू। मम्मा समझ जाती है कि ये शुद्ध भाव से आई लव यू बोल रहा है, तो मम्मा भी रिप्लाई में क्या बोलती है, बेटा आई ऑल्सो लव यू। वही बच्चा अब 10 साल का हो गया, 10 साल का होने के बाद जब वो बोलता है मम्मा आई लव यू, तो मम्मा जानती है कि अभी इसके अंदर उतनी मासूमियत नहीं है, तो मम्मा कहती है विच टॉय यू वॉन्ट। रिप्लाई में मम्मा ये नहीं बोलती है बेटा आई ऑल्सो लव यू, मम्मा समझ जाती है क्यों आई लव यू बोल रहा है, तो मम्मा बोलते विच टॉय डू यू वॉन्ट, बोल देता दिस टॉय। फिर जब वो 16-17 साल का होता है फिर बोलता है मम्मा आई लव यू, तो मम्मा कहती है लड़की का नाम क्या है। कहां से है? वो समझ जाती है। तो 16-17 साल में जब बच्चा मम्मा को कहता है लव यू, तो मम्मा समझ जाती है, सीधा पूछ लेती है लड़की का नाम बता दे। फिर 30-35 साल बाद वापस वो बोलता है मम्मा आई लव यू, मम्मा कहती है मैंने बोला था शादी मत करना। और जब 50 साल बाद वही बेटा 50 साल बाद मां को कहता है मां मम्मा आई लव यू, मम्मा कहती है कहां साइन करना है बोल। इसे कहते हैं इंटरवेल। हमारे प्रेम के अंदर जो इंटरवेल्स आते हैं ये सारे अंतर हैं अलग अलग प्रकार के। तो हां हम भी जब साधना में लगते हैं तो अपनी माला उठाकर जब नए नए इस्कॉन में आते हैं तो कृष्णा आई लव यू, भगवान कहते हैं बेटा आई ऑल्सो लव यू। फिर कुछ साल बीत जाते हैं फिर भी हम कहते हैं कृष्णा आई लव यू, कृष्णा कहते हैं व्हाट डू यू वांट। वो समझते हैं कि अभी ये जो आई लव यू बोल रहा है अभी इसको नौकरी चाहिए मेरे बलबूते पर, इसको अभी ये चाहिए वो चाहिए। तो अभी अलग अलग स्टेजेस में हमारे साधना भक्ति में जब अंतर आने लगता है, इंटरवेल्स आने लगते हैं, जब हमारा भजन निरंतर के बदले अंतर उसके अंदर आने लगते हैं, तो हमारे आई लव यू के अंदर हिडन एजेंडास, अल्टीरियर मोटिव्स, वो सब भगवान के सामने हम प्रस्तुत करने लगते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि ये प्रामाणिक साधु नहीं है। वन हु हैज अल्टीरियर मोटिव्स एंड हिडन एजेंडास, ही कैन नेवर बी अ बोनाफाइड साधु। अगेन, साधु इज नॉट अ पर्सन हु इज सिंपली ड्रेस्ड लाइक अ साधु। एवरी साधका हु इज ट्राइंग टू विन ओवर कृष्णाज हार्ट विथ हिज साधना इज अ साधु। तो ये कनेक्शन जो पहली लाइन का, परित्राणा या साधु नाम, कि भगवान पूर्ण रूप से किसकी सुरक्षा करते हैं, साधु की। प्रामाणिक साधु कौन है, हमने उसका विश्लेषण पूरा किया। वो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है अगर उसका दुराचार भी हो गया लेकिन अनन्य भाव से वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, गलती से उससे कोई गलती हो गई लेकिन वो अनन्य भाव से लगा हुआ है, पश्चाताप कर मेरे निरंतर भजन में लगा है, तो भगवान कहते हैं कि मैं परित्राण उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा अवश्य प्रदान करता हूं। तो ये है भगवान का आश्वासन आज के श्लोक के पहली लाइन में। और हमारी अगली सिटिंग में पार्ट टू में हम लेंगे भगवान द्वारा 5 प्रकार की साधु सुरक्षा। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है, टेक होम मैसेज यह है कि हम जब मदन गोपाल जी के सामने जाकर आई लव यू बोलते हैं तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि वो नहीं जानते कि अब ये कौन से तरीके का आई लव यू बोल रहा है। इसलिए हमें हमारी साधना से अपने अनर्थों को समाप्त करते हुए भगवान के हृदय को जीतने के लिए वो निस्वार्थ अहितु की शुद्ध भाव से अपना भजन करना है, तब जाकर भगवान हर प्रकार से हमारी सुरक्षा परित्राण करने के लिए तत्पर रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की, गौर प्रेमानंद।